अंधेरे में पुनश्च नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान के अंतर्गत मुक्तिबोध की अंधेरे में शीर्षक कविता की व्याख्या प्रकाशित होने के बाद से उस कविता की अनेक व्याख्याएं सामने आई हैं, साथ ही उक्त व्याख्या की समीक्षाएं भी। इस क्रम में मुक्तिबोध के काव्य पर तरह तरह की सम्मतियां भी दी गई हैं। कोई मुक्तिबोध को एकदम सशस्त्र क्रांति का समर्थक घोषित कर रहा है, तो किसी की राय में विरहस्यवाद और अस्तित्ववाद के साथ मार्क्सवाद के समन्वय का असफल प्रयत्न करते हैं। चर्चा चूंकि अंधेरे में से लेकर मुक्तिबोध के समूचे काव्य बल्कि साहित्य तक फैल गई है, इसलिए इस फैलाव का पुनः परीक्षण आवश्यक हो उठा है। यह व्यापक संदर्भ उक्त कविता पर पुनर्विचार के लिए भी उपयोगी हो सकता है। मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि में असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था या सत्ता है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आततायी है। कर्फ्यू और मार्शल लॉ इस सत्ता के आम तरीके हैं। काल क्रमानुसार कविताओं को देखने से पता चलता है कि इस व्यवस्था का आतंककारी रूप क्रमशः बढ़ता जा रहा है। अंतिम दिनों यानी छठे दशक के अंत की कविताओं में हत्या, डाका, आगजनी आदि की घटनाएं जुड़ जाती हैं। इस चौड़े ऊंचे टीले पर कविता में अहाते के अंदर के बंगले में हत्या हो जाती है। चंबल की घाटी में पृथ्वी पर कहीं पर उदार चेतनाध्यक्ष की हत्या होती है। अंधेरे में एक कलाकार गोली का शिकार होता है। यदि इन हत्याओं को प्रतीक ही मान ले तो भी यह सवाल अपनी जगह कायम है कि हत्या के इतने प्रतीक क्यों। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता में संतरेपन की सत्ता का प्रतीक गंजा सिर चांद है, तो चंबल की घाटी में तक आते आते वही सत्ता ऐसा धातु धान का प्रतीक मालूम होती है, जिसके बारे में आशंका है कि छलनाएं असफल होते देख कर इंद्रजाल त्याग वह खुलकर काम करे, कभी कभी सामने भी आ जाए, दस्यु ही बन जाए हथियार कारखाने, चुपचाप कायम करे गिरोह बनाए और आतंक फैलाए। पहले जहां इस सत्ता का आतंक केवल उसके अफसरों, गुप्तचरों, सिपाहियों और सैनिकों के बल पर कायम दिखता है, उसमें क्रमशः उद्योगपति, नेता, विक्रेता, पत्रकार, कलाकार, कवि, समीक्षक आदि ही जुलूस बनाकर शामिल होने लगते हैं। यह जुलूस पहली बार एक स्वप्न कथा में प्रकट होता है और अंत में अंधेरे में कविता के अंतर्गत निसंदेह पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली रूप में चकमक की चिनगारियों से मालूम होता है। यह सत्ता पर्चे जब्त करती है, किताबों को गैरकानूनी घोषित करती है और बड़े पैमाने पर पाबंदी लगाती है। यह सत्ता अपने नंगे दमन के बावजूद कवि की दृष्टि में काफ़ी पेचीदा और मायाविनी है। विशेषतः इसका सांस्कृतिक पक्ष मुक्तिबोध को शोषण की सभ्यता के नियमों के अनुसार बनी हुई संस्कृति के तिलस्मी सियाह चक्रव्यूह स्पष्ट दिखाई देते हैं। वैसे अपनी सारी शालीनता के बावजूद यह संस्कृति अपने नग्न बर्बर रूप को छिपाने में असमर्थ रहती है। कवि के शब्दों में संस्कृति के सुगंधित आधुनिकतम वस्त्रों के अंदर का वासी वह नग्न अति बर्बर देह। ऊपर से देखने में व्यवस्था चाहे जितनी भयानक हो पर है वस्तुतः लकड़ी का रावण ही। इस व्यवस्था के आंतरिक खोखलेपन की ओर मुक्तिबोध ने जगह जगह संकेत किया है। उदाहरण के लिए एक स्वप्न कथा में फुसफुसे पहाड़ों से पुरुषों की आकृतियां हैं और उनकी रिक्त प्रकृतियां हैं। मुक्तिबोध ने सत्ता के खोखलेपन के साथ ही इसकी अमूर्तता का भी उल्लेख किया है। मुझे याद आते हैं शीर्षक कविता में यह सत्ता आकार में निराकार, अपौरुषेय तथा भयंकर दुःस्वप्न का विश्वरूप कही गई है। अंत में इस व्यवस्था को पश्चिमी साम्राज्यवाद से संबद्ध बतलाया गया है। इस दृष्टि से एक स्वप्न कथा के ये शब्द उल्लेखनीय हैं। इस काले सागर का सुदूर स्थित पश्चिम किनारे से जरूर कुछ नाता है, इसीलिए हमारे पास सुख नहीं आता है। इस परिवेश में मुक्तिबोध की प्रमुख चिंता यही है कि डूबता चांद कब डूबेगा। आगे चलकर अंतःकरण का आयतन में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि क्या उत्पीड़कों के वर्ग से होगी न मेरी मुक्ति। चकमक की चिंगारियां में इसी प्रश्न को पूरे देश के पैमाने पर उठाते हुए कवि पुनः कहता है, मेरे सामने है प्रश्न, क्या होगा, कहां, किस भांति, मेरे देश भारत में पुरानी हाय में से किसी तरह से आग भभकेगी, उड़ेंगी किसी तरह से भक से हमारे वक्ष पर लेटी हुई विकराल चट्टाने, व इस पूरी प्रक्रिया में से उभर कर भव्य होंगे कौन मानव गुण। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह आग क्रांति है और ये पंक्तियां क्रांति का आह्वान है। मुक्तिबोध को इस बात का पूरा एहसास है कि यह प्रश्न जितना सीधा है उसका उत्तर इतना सीधा नहीं है, वरना यह आग कहीं भड़क उठी होती। क्रांति निश्चय ही जनता करेगी, किंतु जैसा कि मेरे लोग शीर्षक कविता मुक्तिबोध ने कहा है, किसी की खोज है उनको किसी नेतृत्व की। सवाल यह है कि यह नेतृत्व कौन पैदा करें प्रदान करें। परंपरा से बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ही यह नेतृत्व प्रदान करते आए हैं, किंतु मुक्तिबोध देखते हैं कि बहुत से बुद्धिजीवी सत्ता के हाथों बिक गए हैं। इस बिके हुए बौद्धिक वर्ग की चर्चा मुक्तिबोध की अनेक कविताओं में है, किंतु अंधेरे में कविता के अंतर्गत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध ये लोग हैं। दूसरे शब्दों में बौद्धिक वर्ग है कृतदास। निसंदेह कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम कृतदास नहीं हैं, लेकिन वे सबसे असंग रहकर अपने निजत्व की रक्षा में तल्लीन रहते हैं। चंबल की घाटी में ऐसे गहन निजत्व वाले लोगों को टूट कर गिरे हुए तारों का बुझा हुआ हिस्सा कहा गया है। इनसे कुछ भिन्न बौद्धिकों का एक वर्ग और है, जिनका प्रतिनिधि अंधेरे में कविता का एकांत प्रिय कलाकार है, जो स्वयं मुक्तिबोध का इच्छुक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से मुक्तिबोध के यत्नों के साथ निरंतर रहा है। इसका दुर्भाग्य यही है कि वह कार्य क्षमता से वंचित व्यक्ति है। अपनी असंगता के बावजूद वह सत्ता के अधिकों के हाथों मारा जाता है। फिर भी कुछ लोग अभी जिंदा हैं और ये अपने वर्ग के पूर्वोक्त सभी लोगों से भिन्न हैं। इनकी आत्मा की एकता में द्वी है, इनकी आत्मा में गहरी बेचैनी है। ये न तो सत्ता से समझौता करने के लिए तैयार हैं और न असंगता का मार्ग ही अपनाना चाहते हैं। मुक्तिबोध के शब्दों में आत्मचेतस भी हैं और विश्वचेतस भी, इसीलिए इनमें भयानक आत्मसंघर्ष चलता रहता है। अपने वर्ग की स्वाभाविक मध्यवर्गीय कमजोरियां इनमें भी है, किंतु इन्हें अपनी कमजोरियों का पूरा एहसास है। इनमें आत्मसमीक्षा इतनी तीव्र है कि वर्तमान व्यवस्था के बने रहने के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं और इस प्रकार एक गहरे अपराध बोध से पीड़ित रहते हैं। इसलिए ये उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए स्वयं भी टूटने को तैयार दिखते हैं। मुक्तिबोध की कविताओं का काव्य नायक मैं सामान्यतः इन्हीं लोगों का प्रतिनिधि है, जिसकी वर्गत स्थिति चंबल की घाटी में शीर्षक कविता में इस प्रकार स्पष्ट की गई है। अपने समाज में अकेला हूँ बिल्कुल, मुझ में जो भयानक छटपटाहट है नहीं वह किसी में, इसलिए अपना ही श्रेणीगत साम्य है जिनसे, उनसे ही गहरा विद्वेष। विरोध विरोध विरोध, किंतु जो दूर हैं अलग पृथक हैं, जो अतिभिन्न हैं मित्र हैं वे ही, परंतु सद्गुण धर्म जो उनके ले नहीं पाता हूँ चाहने पर भी। फिर भी इस मय का निरंतर यही प्रयास है कि उस भिन्न वर्ग से एकात्म स्थापित कर ले और इस प्रकार मुक्ति की प्राप्ति करे, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि कभी अकेले में मुक्ति न मिलती है, यदि वह है तो सबके ही साथ। एक तरह से देखें तो मुक्तिबोध की कविताओं में काव्य नायक के रूप में व्यक्त होने वाला यह चरित्र उन कविताओं का अभिप्रेत या संभाव्य पाठक भी है जिसे ये संबोधित पर प्रतीत होती है। निश्चय ही यह काव्य नायक मुक्तिबोध का प्रतिरूप नहीं है और न इसे मुक्तिबोध समझने का भ्रम ही होना चाहिए। यह कवि की कल्प सृष्टि है, बल्कि कल्प सृष्टियों में से एक, ठीक उसी तरह जैसे एक साहित्यिक की डायरी का मैं और क्लाड इथरली, पक्षी और दीमक, विपात्र आदि कहानियों का मैं। इस चरित्र को प्रबुद्ध, प्रेरित और सक्रिय करके उसकी आस्था को दृढ़ करने के लिए ही मुक्तिबोध ने यह आत्मपरक ढंग अपनाया है। अभिप्रेत यही है कि गुप्त स्वार्थों और चालाक बेईमानियों की सभ्य तानाशाही के दबाव के सम्मुख अपने चरित्र का खरापन और अपना मानवीय गौरव बनाए रखते हुए ऐसा संगठित सामूहिक जनप्रयास किया जाए कि यह स्थिति बदले, समाप्त हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि पक्षी और दीमक तथा विपात्र की सांस्कृतिक संस्था का संसार ही आज की व्यवस्था का ही एक छोटा नमूना है और इस प्रकार मुक्तिबोध के काव्य संसार की उक्त पटभूमि का ही प्रतिरूप है। इसी प्रकार क्लाड इथरली का पागलपन भी मुक्तिबोध की कविताओं की तिलस्मी गुहा और तहखाने की याद दिलाता है। काव्य संसार के विभिन्न मध्यवर्गीय चरित्रों की तरह इन कहानियों में ऐसे चरित्र मिलते हैं जिनमें कुछ व्यवस्था के कृतदास हैं तो कुछ एकदम असंग उदासीन और कुछ बेचैन विक्षुब्ध आत्मचेतस। इन कहानियों में भी एकदम घूंट वातावरण से मुक्ति की छटपटाहट व्यक्त हुई है। संक्षेप में यह है मुक्तिबोध के समूचे साहित्य के संदर्भ की मोटी रूपरेखा। उनके केंद्रीय कृतिकथ्य का निरूपण इसी संदर्भ में समीचीन है। एक साहित्यिक की डायरी के डबरे पर सूरज का बिंब शीर्षक आलेख में एक नवोदित लेखक कहता है कि मैं उस भयानक मशीन का चित्रण करने वाली कहानी नहीं बल्कि उपन्यास लिखने वाला हूँ जिसमें हर आदमी वह नहीं है जो वस्तुतः है या होना चाहेगा। क्या मुक्तिबोध का सारा साहित्य ही वह उपन्यास नहीं है? विपात्र की सांस्कृतिक संस्था, चांद का मुंह टेढ़ा है का काइया चांद, चंबल की घाटी में का डरावना डाकू, इस चौड़े ऊंचे टीले पर का भूतहा बंगल, अंधेरे में कि किसी मृत दल की शोभा यात्रा आदि, वह भयानक मशीन या उस मशीन के ही पुर्जे नहीं तो क्या है? किंतु विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है मशीन का एक घातक प्रमाद कि उसके चलते हर आदमी वह नहीं है जो वस्तुतः है या होना चाहेगा। दूसरे शब्दों में यह ऐसा तंत्र है जिसमें आदमी अपना वास्तविक रूप ही नहीं खो बैठता बल्कि अपनी सारी संभावनाओं से ही वंचित रह जाता है। इस प्रकार एक व्यापक अलगाव पैदा होता है जो है और जो वस्तुतः है के बीच, जो वस्तुतः है और जो होना चाहता है के बीच। यह अलगाव पूरे समाज के स्तर पर वर्ग भेद है तो व्यक्ति के स्तर पर अस्मिता का लोभ। पूंजीवाद का विश्लेषण करते हुए मार्क्स ने अलगाव के व्यक्तिक से लेकर सामाजिक स्तर तक व्याप्त सभी पक्षों का उद्घाटन किया है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में इस अलगाव के शिकार सभी वर्गों के लोग होते हैं, किंतु इसका सबसे घातक प्रभाव मजदूर वर्ग पर पड़ता है, इस हद तक कि वह सरभारा हो जाता है। मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में खास तौर से इस अलगाव पर दृष्टि केंद्रित की है, किंतु उनके सम्मुख इस अलगाव का प्रमुख आलंबन निम्न मध्य वर्ग है। निम्न मध्य वर्ग का अलगाव उनके साहित्य का विषय शायद इसलिए है कि फिलहाल यही वर्ग साहित्य का सुलभ संबोधित पाठक है। वैसे वर्ग के रूप में, निम्न मध्य वर्ग के रूप में, निम्न मध्य वर्ग को लेकर मुक्तिबोध को कोई मुगालता नहीं है। विपात्र के बॉस के दरबार में शिक्षित मध्य वर्गीय व्यक्तियों के व्यवहार का यथार्थ चित्र इस वर्ग के सामूहिक नपुंसकत्व की स्पष्ट घोषणा करता है। इसी वर्ग को चंबल की घाटी में घूमने वाले डाकू की कुर्सी कहा गया है और अंत में अंधेरे में कविता के पागल की आत्मभर्त्सना इसी वर्ग की कटु समीक्षा है। किंतु इन सब के बावजूद इसी वर्ग में मुक्तिबोध को संभावना के बीज भी दिखाई पड़ते हैं और मुक्तिबोध के कवि व्यक्तित्व का यही वह पहलू है जो उन्हें खूंखार सिनिक संशयवाद होने से बचा लेता है। इसीलिए उनका साहित्य मध्य वर्ग की कोरी भर्त्सना और कटु आलोचना मात्र नहीं बल्कि उन्हीं के शब्दों में मर्मी आलोचना है, जिसकी व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की है। मर्मी आलोचना ऊपर से चाहे जितनी कठोर और खुरदुरी हो, अंततः उसमें एक बड़ी भारी श्रद्धा होती है और यह कि मनुष्य में सुधार किया जा सकता है, यह कि मनुष्य अपनी कमजोरियों के ऊपर उठ सकता है। यह श्रद्धा व्यक्ति विशेष पर श्रद्धा नहीं है किंतु उसके सुषुप्त या जागृत सामर्थ्य पर श्रद्धा है। इस प्रसंग में मुक्तिबोध कहते हैं कि इस बुनियादी श्रद्धा के फलस्वरूप इतना सारा साहित्य लिखा गया है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य के निहित सामर्थ्य पर यदि यह बुनियादी श्रद्धा न हो तो फिर साहित्य की आवश्यकता क्या है। इसी बुनियादी श्रद्धा के कारण मुक्तिबोध यह कहते हैं कि हम सब लोग ऐसे डबरे हैं जो अपने भीतर सूरज का प्रतिबिंब धारण किए हैं। वे डबरे पर सूरज का बिंब जैसे जीवंत बिंब के द्वारा हर डबरे को, या जो अपने आप को डबरा समझता है, उसे उसके खुद के भीतर निहित सूरज के बिंब के प्रति आत्मसजग करना चाहते हैं। इसीलिए उनकी रचनाओं में मानव की इस अंतर्निहित शक्ति के बिंब प्रायः मिलते हैं। अंतस्थल में छिपी हुई विक्षोभ मणियां और विवेक रत्न ऐसे ही बिंब है। इसी प्रसंग में परित्यक्त शिशु का भी उल्लेख किया जा सकता है और मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं का भी। मुक्तिबोध की कविताओं में एकाधिक बार प्रकट होने वाला वह रक्तालोक स्नात पुरुष भी मनुष्य की इसी अंतः संभावना का मूर्त रूप है। मुक्तिबोध ने जहां मनुष्य की इस सामर्थ्य संभावना को पहचाना है, वहीं इस तथ्य को भी उन्होंने अनदेखा नहीं किया है कि बहुत से लोग अपनी सामर्थ्य संभावना से बेखबर हैं। यह आत्मविस्मृति सदा अनायास ही नहीं होती बल्कि सायास भी होती है। लाभ, लोभ या भय आतंक के कारण बहुत से लोग अपने इस पक्ष को जानबूझकर मन के तहखाने में डाल देते हैं। क्लाड इथरली कहानी में मुक्तिबोध कहते हैं कि हमारे अपने अपने मन, हृदय, मस्तिष्कों में ऐसा ही एक पागलखाना है जहां हम उन उच्च पवित्र और विद्रोही विचारों और भावों को फेंक देते हैं। अंधेरे में कविता में भी एक पागल है जिसका गाना सुनने के बाद काव्य नायक को लगा कि व्यक्तित्व तो अपना ही, अपने में खोजा हुआ वही उसे अकस्मात मिलता था रात में। यह पागल तहखाने या पागलखाने में नहीं बल्कि एक बरगद के तले पड़ा रहता है। यहाँ तहखाने में तिलस्मी गुफा में रहने वाला रक्तालोक स्नात पुरुष है। यह पुरुष स्वेच्छा से गुहावास कर रहा है या उसे किसी ने गुहावास दिया है, यह स्पष्ट नहीं कहा गया है, किंतु प्राकृत गुहा में जलप्रपात के अंदर चमकती हुई मणियों के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि हाय हाय, मैंने उन्हें गुहावास दे दिया। मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी में कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी पर विचार करते हुए इस प्रकार के सेंसर्स यानी गहरे अंतर्निषेधों का विस्तार से विश्लेषण किया है। जिस तरह इन अंतर्निषेधों के खिलाफ संघर्ष करने से कलाकार की ईमानदारी प्रकट होती है, उसी तरह सामान्य मनुष्य के लिए ही ईमानदारी का तकाजा है कि वह अपने अंतर्निषेधों से संघर्ष करे। इसीलिए मुक्तिबोध ने आत्मसंघर्ष पर इतना अधिक बल दिया है। वैसे तो विभक्त मन के दो पक्षों में आत्मसंघर्ष की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, पर बहुत से लोग इन दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थिति स्थापित करके सहज आत्मसंघर्ष को दबा देते हैं। इसीलिए मुक्तिबोध को आत्मसंघर्ष पर विशेष बल देने की आवश्यकता पड़ी, किंतु आत्मसंघर्ष ही काफ़ी नहीं है। मुक्तिबोध यह मानते हैं कि आत्मपक्ष और परिस्थिति पक्ष एक ही वास्तविकता के दो अंग हैं और इन दोनों में गहरे अंतः संबंध हैं। इस प्रकार आत्मसंघर्ष का गहरा संबंध बाह्य सामाजिक संघर्ष से है। जाहिर है कि सामाजिक संघर्ष में भाग लेकर ही इस आत्मसंघर्ष को निर्णायक दिशा की ओर उन्मुख किया जा सकता है। इसलिए मुक्तिबोध की अधिकांश कविताओं का अंत किसी हड़ताल या जन आंदोलन अथवा किसी जनक्रांति के आरंभ से होता है, और काव्य नायक कभी तो उस आंदोलन या क्रांति का दृष्टा मात्र होता है और कभी उसका प्रेरक। जो भी हो, किसी न किसी रूप में काव्य नायक उस घटना से अपना लगाव जरूर महसूस करता है। इस तरह आत्मसंघर्ष की परिणति अंततः सामाजिक संघर्ष में होती है। कुल मिलाकर मुक्तिबोध के संपूर्ण साहित्य के कथ्य का बुनियादी ढांचा यही है। यह सही है कि प्रत्येक रचना में यह पूरा ढांचा नहीं आ सका है, किंतु अपनी आंशिक सीमा में भी हर रचना किसी न किसी प्रकार इस प्रकार कथ्य का आभास अवश्य देती है। स्पष्टतः इसी ढांचे में न रहस्यवाद के लिए गुंजाइश है न अस्तित्ववाद के लिए। फिर भी कुछ आलोचक हैं जिन्हें मुक्तिबोध में रहस्यवाद भी दिखाई पड़ता है और अस्तित्ववाद भी। 1969 के 21 और 28 दिसंबर के धर्मयुग में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध और आत्मसंघर्ष और उनकी कविता शीर्षक जो लंबा लेख प्रकाशित किया है, उसमें मुक्तिबोध की कविता में रहस्यवाद और अस्तित्ववाद दोनों के तत्व सोदाहरण निरूपित किए गए हैं। रहस्यवाद और अस्तित्ववाद पैदा होते हैं आत्मग्रस्तता से, और डॉक्टर शर्मा की धारणा है कि मुक्तिबोध बाहर की दुनिया में मार खाकर अंतर्मुख तथा आत्मग्रस्त हो गए। किंतु मुक्तिबोध की एक भी कविता ऐसी नहीं है जिसमें नितांत अंतर्मुखता हो। सर्वत्र अंतर्मुखता के साथ बहिर्मुखता अनिवार्यतः जुड़ी चली जाती है। उदाहरण के लिए डॉक्टर शर्मा ने जिन तीन कविताओं मुझे पुकारती हुई पुकार, कल जो हमने चर्चा की थी और एक स्वप्न कथा के आधार पर रहस्यवाद और अस्तित्ववाद की स्थापना की है, उनमें भी कवि की आत्मपीड़ा का आधार जगत पीड़ा ही है। मुझे पुकारती हुई पुकार में प्राण की उदास भूमि के साथ उजाड़ विश्व की समस्त नग्नता का चित्र है। कल जो हमने चर्चा की थी में चर्चा के अंतर्गत स्पष्ट कहा गया है कि देश देश की पीड़ाओं में के उन सत्यों की बातें की थी, और एक स्वप्न कथा में तो स्वप्न के सागर तल पर एक ऐसा जुलूस दिखता है जिसमें जाने पहचाने नेता, विक्रेता, अफसर और कलाकार जैसे अनगिनत चरित्र शामिल हैं। क्या ये बाहरी दुनिया के सारे चित्र आत्मग्रस्त चित्र के निजी बिंब हैं? मुझे पुकारती हुई पुकार कविता में डॉक्टर शर्मा को रहस्यवाद इसलिए दिखा कि उसमें एक पंक्ति है, तिमिर विवर में पड़ी अशांत नागनी, नागनी दिखते ही बोल उठे कि वह कुंडलिनी है। कल जो हमने चर्चा की थी कविता में तो और भी सुविधा है, क्योंकि उसमें साफ साफ कुंडलिनी का ही जिक्र है और साथ साथ इंगला पिंगला सुषुम्ना का भी। इतने प्रमाण पत्र एकत्र मिलने पर वे क्यों न मुक्तिबोध में हठयोगियों का साधनात्मक रहस्यवाद देखें, खासतौर से तब जब कविता में ज्वालामुखियों के गर्भ में उतरने की बात भी कही गई हो और आगे चलकर एक स्वप्न कथा में काले सागर के तल में बैठने का भी जिक्र हो। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे प्रतीक नए पुराने रहस्यवादी कवियों के हैं, किंतु सवाल यह है कि मुक्तिबोध ने इसका इस्तेमाल किस प्रकार किया है और कविता के कथ्य के ढांचे में ये प्रतीक क्या अर्थ ग्रहण करते हैं। तिमिर विवर में पड़ी अशांत नागनी के मुख से रहस्यानुभूति का अमृत नहीं झरता, बल्कि भूल चूक ध्वंसनी अनावृता हुई। यही नहीं, बल्कि पुकारती हुई पुकार ने समस्त खोल दी छिपी प्रवंचना। यह प्रवंचना रहस्यवादियों का आंतरिक पाप बोध नहीं, बल्कि किसी उजाड़ प्रांत की महान मानवीय कथा से जुड़ी हुई है। निःसंदेह कवि के अनुसार बाहर से पुकारती हुई यह पुकार वस्तुतः उसके अंदर की ही है, किंतु इतने ही से वह रहस्यवादी नहीं हो जाती। इससे इतना ही प्रमाणित होता है कि आज भी नवीन प्रेरणा यहाँ न मर सकी, न जी सकी, परंतु वह न डर सकी। क्या प्रेरणा का यह स्वर रहस्यवाद है? कल जो हमने चर्चा की थी में रहस्यवादी रहस्य की शोध करते करते डॉक्टर शर्मा ने जिस कौशल से मुक्तिबोध की सूर्य कन्या को पोलिश महिला अग्नेशका से बदल दिया, उस भौतिकवाद की जितनी दाद दी जाए कम है। इस शोध से मुक्तिबोध के रहस्यवाद का उद्घाटन हो न हो, आलोचना के तिलस्मी, अयारी और जासूसी रूप की एक झलक अवश्य मिल जाती है। बचे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और कुंडलिनी जैसे चिर परिचित रहस्यवादी प्रतीक, क्या यह प्रतीक इस कविता में किसी रहस्यानुभूति का विवरण उपस्थित करते हैं? क्या इस कविता में मुक्तिबोध यह कह रहे हैं कि कल जो हमने चर्चा की थी वह योग साधना का कोई रहस्यात्मक अनुवाद था? क्या इस कविता में मुक्तिबोध अग्नेशका को उत्तर साधिका या योगिनी बनाकर कोई गुह्य साधना करते दिखाई पड़ रहे हैं? निसंदेह इस कविता में एक बातचीत के तीव्र अनुभव का भावावेगपूर्ण वर्णन है, किंतु जरूरी नहीं कि यह बातचीत सचमुच किसी और से, किसी समान धर्मा से ही हुई हो। मुक्तिबोध की अन्य कृतियों की तरह यह बातचीत अपने आप से भी हो सकती है। चर्चा का विषय है देश देश की पीड़ाएं। इन पीड़ाओं का विश्लेषण ऐसा है जैसे कोई ज्वालामुखियों में उतरकर जीवन की सच्चाई और सही बात के उत्तर ढूंढ रहा हो। कहने को यह अपना ही अंतस्थल है, पर एक तरह से यह जन मन का भी अंतस्थल कहा जा सकता है। आस्था का क्षयवट यहीं मिलता है और वेगवान पीड़ा की कन्या भी, जो अपने गुणों में कर्मनिष्ठा जनजन्या है, यह कन्या जितनी पृथ्वी तनया है उतनी ही सूर्य कन्या भी। मुक्तिबोध के शब्दों में आत्मा का प्रतीक है सूरज तथा जन अनुभव पृथ्वी के भीतर की रज है। न यह सूरज कोई रहस्य है और न यह धरती। वस्तुतः इस कविता में भी जगत जीवन की पीड़ाओं के बीच आस्था की प्राप्ति के अनुभव का प्रतीकात्मक चित्र है। कविता के इस कथ्य की आँच में सारे रहस्यवादी प्रतीक पिघल कर नितांत लौकिक सामयिक अर्थदीप्ति प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह देखें तो एक स्वप्न कथा रहस्यवाद से और भी मुक्त है। वैसे रहस्यवाद ढूंढने वालों के लिए इसमें एक अनहद नाद निनाद सर्वतः भी मौजूद है। एक स्वप्न कथा में आदि से अंत तक एक सियाह समुन्दर लहराता है। प्रश्न है, काले समुन्दर की व्याख्या क्या, भाष्य क्या? एक रहस्यवाद खोजी की नज़र में यह उपचेतन है, किंतु यह कैसा उपचेतन है जिसके बारे में मुक्तिबोध यह कहते हैं कि इस काले सागर का सुदूर स्थित पश्चिम किनारे से जरूर कुछ नाता है, इसीलिए हमारे पास सुख नहीं आता है। क्या फ्रायड या युंग के उपचेतन को भी इस पश्चिम किनारे से नाते का एहसास था? कवि फिर कहता है कि सहस्रों वर्षों से यह सागर उफनता आया है, उसका तुम भाष्य करो, उसका व्याख्यान करो। व्याख्यान करता है सागर से उठा हुआ पर्वताकार भयानक देव। शोषण की अतिमात्रा, स्वार्थों की सुखयात्रा, जब जब संपन्न हुई आत्मा से अर्थ गया, मर गई सभ्यता। भीतर की मोरियां अचानक खुल गईं, जल की सतह मलिन ऊंची होती गई, अंदर सुराख से अपने उस पाप से शहरों के टावर सब मीनारे डूब गईं, काल समुन्दर ही लहराया लहराया। ऊपर की पंक्तियों से स्पष्ट है कि भीतर की जिन मोरियों के खुलने से यह काला समुन्दर लहराया है वे शोषण की अतिमात्रा से बनी हैं। ये आभ्यंतर ग्रंथियां वस्तुतः वही समस्याएं ही हैं। मणि के समान चमकने वाली स्फूर्तियां इसी सागर की जलखोहों में डूब जाने को विवश हुई हैं। ये मणियां किसी रहस्यवादी साधक के आत्मसत्य के समान मन के अंदर पहले ही से छिपी नहीं बैठी हैं, जो नाक आँख मूंद कर प्राणमात्र साधने से उपलब्ध हों। निसंदेह इस कविता में मुक्तिबोध ने एक ऐसे पत्थर का प्रतीक किया है जो पूरे ब्रह्मांड की केंद्र क्रियाओं का तेजस्वी अंश हो, किंतु यह युगानुग तिमिर सागर के विरुद्ध निजी आत्मा की महत्वपूर्ण सत्ता के द्वारा अपने वास्तविक अर्थ का उद्घाटन करता है। यह पत्थर कोई शाश्वत सनातन सत्य नहीं है, बल्कि मुक्तिबोध की दृष्टि में इसका स्वरूप ऐतिहासिक है। इसके पूर्व इतिहास की ओर संकेत करने के लिए ही कविता में यह ख्याल आता है कि एक ज्ञानी पूर्वज ने नदी का पानी काट मंत्र पढ़ते हुए गहन जलधारा में गोता लगाया था और एक गोलमोल मनोहर तेजस्वी शिलाखंड तपोमय जल में से निकाला था और उसे देव बना पूजा की। इस पुरागाथा से ध्वनित होता है कि मुक्तिबोध स्वयं भी इसी पत्थर को खोज रहे हैं जिसे वे देव बनाकर पूजा कर सके। मुक्तिबोध आज के युग में भी वह ज्ञानी पूर्वज होना चाहते हैं या इसके देव पूजन को एक निश्चित ऐतिहासिक अर्थ देने का प्रयास कर रहे हैं। स्पष्टतः मुक्तिबोध की दृष्टि में जिस तरह सहस्रों वर्षों से यह सागर उफनता आया है, उसी तरह सहस्रों वर्षों से उसे थाह कर पत्थर निकालने का ही प्रयास होता आया है। यह पत्थर उतना ही ऐतिहासिक है जितना सागर। कभी उस पत्थर का रूप धार्मिक था, लेकिन आज भी उसका धार्मिक होना आवश्यक नहीं है। हाँ, उसकी प्राप्ति में जान का जोखिम तब भी था और अब भी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह ऐतिहासिकता रहस्यवाद नहीं बल्कि रहस्यवाद का दुश्मन है। डॉक्टर शर्मा का यह कथन शुद्ध कपोल कल्पना है कि मुक्तिबोध उस ज्ञान से उकता उठे थे जो सतत विकासमान हो और उन्हें चाहिए था पूर्ण ज्ञान। यदि उन्हें पूर्ण ज्ञान से संतोष करना होता तो वे एक साहित्यिक की डायरी में यह न लिखते कि ज्ञान को अधिकाधिक मार्मिक यथार्थमूलक और विकसित करने का जो संघर्ष है वह वस्तुतः कलाकार का सच्चा संघर्ष होता है। क्या वह कवि सतत विकासमान ज्ञान से उकता उठा था जो निरंतर वस्तु तत्व के वस्तुमूलक आकलन पर बल देता है, जो यह मानता है कि लेखक की निष्ठा और आत्मविश्वास कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उसके साहित्यिक के फ्रॉड बन जाने से बचाए, जो यह कहता है कि ईमानदारी के भीतर ही एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है और जिसका यह विश्वास था कि जीवन जगत का जो बोध है उसका व्यापक होना, पुष्ट होना, विश्व में ज्ञान का जो आज विकास स्तर प्राप्त है उसको आत्मसात करना और उससे आगे बढ़ना आवश्यक है। यदि मुक्तिबोध को ही पूर्ण ज्ञान अभीष्ट होता जो रहस्यवा दे सकता है तो फिर इतने तीव्र आत्मसंघर्ष की आवश्यकता क्या थी। मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष इस बात का प्रमाण है कि उन्हें उसी ज्ञान की तलाश थी जो सतत विकासमान हो। मार्क्सवाद पूर्ण ज्ञान का दावा नहीं करता, इस बात का एहसास मुक्तिबोध को उन लोगों से कहीं ज़्यादा था जो तोता रटंत इस वाक्य को दोहराते रहने के बावजूद व्यवहार में मार्क्सवाद के लिए पूर्ण ज्ञान का दावा नहीं करते बल्कि मार्क्सवाद के बारे में अपने पूर्ण ज्ञान का भी दावा करते हैं। मार्क्सवाद पूर्ण ज्ञान का दावा भले न करे, मार्क्सवादी तो कर ही सकता है। और ऐसी हालत में जब कि स्वयं मुक्तिबोध ने अपनी कृतियों में अपने आप को मार्क्सवादी न कहा हो, उन्हें गैर मार्क्सवादी साबित करना और भी आसान हो जाता है। एक स्वप्न कथा ऐसी कविता है जिसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार मुक्तिबोध फिर मनोविश्लेषण शास्त्र, रहस्यवाद, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रयत्न में यदि किसी की संगति नहीं बैठती है तो मार्क्सवाद की, क्योंकि कविता के अंत में क्षोभ विद्रोह भरे संगठित विरोध के साहसी समाज को जो जहाज अकस्मात आता है उसकी कोई संगति नहीं है। संगति न होने का कारण अकस्मात, क्योंकि जो जहाज अकस्मात आता है वह अकस्मात डूब भी सकता है। डॉक्टर शर्मा का जितना ध्यान अकस्मात पर है उतना यदि स्वप्न कथा पर होता तो शायद इस जहाज की संगति पर ऐसी आपत्ति न होती। यदि स्वप्न कथा में मार्क्सवाद के प्रतीक जहाज की संगति नहीं है तो फिर मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रतीक उन पक्षियों की क्या संगति है जो सहस्रों वर्षों से उफनते हुए सागर का भाष्य करने की सीख देते हैं। फिर क्या संगति है रहस्यवाद के प्रतीक उस पत्थर की जो पूरे ब्रह्मांड की क्रियाओं का अंश है और जिसे सागर तल में खोजना है। उसी तरह ग्लानी कर लहरों में कष्ट लगाना, सतहों पर छटपटा कर गिरना, माथे पर चोट लगना, लहरों द्वारा रक्त का चूसा जाना आदि अस्तित्ववादी भाव जगत के कार्यक्रम की भी संगति है। स्वप्न कथा के अंदर यदि संगति है तो उन सभी की जो किसी न किसी तरह सागर से संबद्ध हैं या फिर किसी की नहीं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि एक स्वप्न कथा स्वप्न नहीं बल्कि फैंटेसी में रची हुई कविता है जिसकी रचना प्रक्रिया पर मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक की डायरी के अंतर्गत तीसरा क्षण में विस्तार से लिखा है। बुनियादी भ्रम वही है जहां सियाह सागर को मनोविश्लेषण के उपचेतन का प्रतीक मान लिया जाता है, जबकि कविता के अंतर्गत यह सियाह सागर एक गतिशील प्रतीक की तरह हर नए स्वप्न चित्र में अपना रूप बदलता जाता है। इसीलिए इस कविता में मनोविश्लेषण शास्त्र और रहस्यवाद देखना उतना ही गलत है जितना अस्तित्ववाद देखना। डॉक्टर शर्मा ने जिन क्रियाकलापों के आधार पर इस कविता में अस्तित्ववाद का निरूपण किया है उससे लगता है कि उनकी दृष्टि में अस्तित्ववाद कोई निश्चित जीवन दृष्टि नहीं बल्कि भाव जगत के कुछ क्रियाकलापों की रूढ़ियों का सामूहिक नाम है। उन्हें जब मुक्तिबोध में दुनिया को लिजलिजी कहने, उसे देखकर उबकाई आने, सड़ने, कनखुजरे खजूरे रेंगने आदि की क्रियाएँ नहीं मिलती तो वे कह उठते हैं कि मुक्तिबोध का अस्तित्ववाद सार्थ की भावभूमि से अलग है। लेकिन इसके बाद जब चंबल की घाटी में खामोश सिसकियां भरने वाला मन दिखाई पड़ता है तो वे चट बोल पड़ते हैं, यह किरकेगार्द और काफ्का के प्रदेश में विचरण करने वाला अस्तित्ववाद है। इस प्रकार यदि ग्लानीकर सागर में गश खाना और टीले पर खामोश सिसकियां भरना ही अस्तित्ववाद है तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस अस्तित्ववादी तंबू के नीचे दुनिया का बहुत सारा साहित्य आ जाएगा। दरअसल सवाल भाव जगत के उस ढांचे का है जिसमें एक क्रियाकलाप एक ही निश्चित अस्तित्ववादी अर्थ ग्रहण करते हैं और तय है कि मुक्तिबोध की एक स्वप्न कथा कविता के भाव जगत का ढांचा उनकी अन्य कविताओं की तरह अस्तित्ववादी ढांचा से बाहर पड़ता है। यदि ऐसा न होता तो एक स्वप्न कथा में एक पंक्तियाँ न होती। मैं ही नहीं वरन अन्य अनेक जन दुखों के द्रोहपूर्ण शिखरों पर चढ़ करके देखते विराट उन दृश्यों को। अस्तित्ववादी अंतर्मुख अकेला व्यक्ति इस प्रकार अनेक जन की बात सोच भी नहीं सकता, स्वप्न में भी नहीं। मुक्तिबोध पर अस्तित्ववाद के प्रभाव के रूप में एक और बात कही गई है, अपराध बोध या पाप बोध। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि आत्मभर्त्सना का ऐसा प्रखर स्वर हिंदी के किसी दूसरे कवि की रचनाओं में नहीं सुनाई देता। मुक्तिबोध की रचनाओं में आत्मभर्त्सना का स्वर असंदिग्ध है, लेकिन इस आत्मभर्त्सना को स्वयं मुक्तिबोध की आत्मभर्त्सना कहना भारी भ्रम है। वस्तुतः मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं के में मैं के द्वारा अपने पूरे मध्यवर्ग की आत्मभर्त्सना को अभिव्यक्त किया है, इसलिए इस अपराध बोध को अस्तित्ववादी व्यक्ति की अपराध स्वीकृति समझना भूल है। इसी प्रकार मुक्तिबोध की कविताओं में जहाँ कहीं काव्य नायक अपनी दुर्बलता और असमर्थता स्वीकार करता दिखाई देता है, वहाँ उसे स्वयं मुक्तिबोध के साथ चिपकाकर अस्तित्ववादी प्रभाव का प्रमाण पेश कर दिया गया है। उदाहरण के लिए अंधेरे में कविता में काव्य नायक का यह कथन है कि यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको। ऐसा लगता है कि मुक्तिबोध जैसे इस आशंका से पूर्ण परिचित थे, उन्होंने एक साहित्यिक डायरी में एक सच्चे लेखक को आलोचक से अलगाते हुए लिखा है कि आलोचक साहित्य का दारोगा है। माना कि दरोगापन बहुत बड़ा कर्तव्य है। साहित्य, संस्कृति, समाज, विश्व तथा ब्रह्मांड कोष्टक में वही ब्रह्मांड जिसे डॉक्टर रामविलास शर्मा बहुत पीड़ित हैं ना कोष्टक बंद के प्रति। लेकिन मुश्किल यह है कि वह जितना ऊंचा उत्तरदायित्व तो सिर पर लेता है, अपने को उतना ही महान अनुभव करता है, और सच्चा लेखक जितनी बड़ी जिम्मेवारी अपने सिर पर ले लेता है, स्वयं को उतना ही अधिक तुच्छ अनुभव करता है। उसे अपनी अक्षमता और आत्मसीमा का साक्षात बोध होता रहता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि वह अपनी अभिव्यक्ति की तुलना जी में धड़कने वाले केवल वस्तु सत्य से ही नहीं करता, वरन अपनी स्वयं की साक्षात्कार सामर्थ्य की तुलना उस वस्तु सत्य की विशालता से करता है। आत्मसत्य भी कह सकते हैं उसे, जिसकी धारणा के लिए उसे लगता है कि जितनी आवश्यक मनःशक्ति उसमें होनी चाहिए उतनी नहीं है। कभी कभी तो उसे केवल आभास संवेदन से ही काम चला लेना पड़ता है। तब अपनी विषय वस्तु की विशालता और गहराई की तुलना में लेखक अपने को हीन क्यों न अनुभव करे, जबकि वह खूब जानता है कि उसने जो कुछ वस्तुतः संपन्न किया है उससे भी अच्छा किया जा सकता था। विषय वस्तु के प्रति लेखक का यह संवेदनात्मक उत्तरदायित्व उसकी मनःशक्ति को किस तरह भंग किए रखता है, यह किसी सच्चे लेखक से ही जाना जा सकता है।